आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
युधिष्ठिर मात्र पितृ गुरु भक्त होने के साथ साथ श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। धर्म के अंश से जन्मने के कारण धर्म के गूढ़ तत्वों को गहराई से समझते थे। बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने सत्य और क्षमा को कसकर थामे रखा। ध्रुव क्रीड़ा में पराजय के बाद जब भरी सभा में द्रौपदी की धर्षणा की जा रही थी, तब भीम और अर्जुन जैसे योद्धा बड़े भाई का इशारा पाते ही सारे गुरुकुल का सर्वनाश करने के लिए तैयार थे। पर धर्मराज युधिष्ठिर तब भी अपना धर्म धारण कर मौन रहकर सब सहते रहे। ध्रुव सभा में तब भी सब आश्चर्यचकित थे जब महाराज धृतराष्ट्र के लगातार आग्रह करने पर भी द्रौपदी स्वयं को मुक्त करने का वरदान नहीं मांगती है। पर क्यों नहीं मांगती वे स्वयं की मुक्ति? उनके इस कार्य में ही इस प्रश्न का उत्तर निहित है। द्रौपदी युधिष्ठिर और चारों भाइयों के लिए उनके धन व अस्त्र शस्त्रों सहित मुक्ति मांगती है। चूंकि युधिष्ठिर के सर्वस्व में ही द्रौपदी और उनके चारों अन्य पति भी सम्मिलित हैं। धर्मानुसार द्रौपदी युधिष्ठिर और उनके सर्वस्व की मुक्ति के साथ ही स्वयं भी मुक्त हो जाती है। यही है धर्म परायणता। द्रौपदी के इस महान कार्य को देखकर तब कर्ण को भी कहना पड़ा कि
मैंने मनुष्यों में जिन महान स्त्रियों के अद्भुत कार्य अब तक सुने हैं, उनमें से कोई भी द्रौपदी के इस कार्य के समतुल्य नहीं हो सकता।
इसीलिए अंत में महाराज धृतराष्ट्र ने आगा पीछा सोचकर पांडवों को उनका सर्वस्व लौटाकर उन्हें भली भांति समझा बुझाकर विदा कर दिया। परंतु महाराज धृतराष्ट्र की इस व्यवस्था से न शकुनी शांत हुए थे और न ही दुर्योधन ही संतुष्ट था। तब फिर से जुए की योजना बनाई गई। युधिष्ठिर को दोबारा ध्रुत क्रीड़ा का आमंत्रण भेजा गया। धर्मावतार युधिष्ठिर भी सब कुछ जानबूझकर फिर जुआ खेलने के लिए लौट आए। इस बार खेल के नए अनुबंध बनाए गए कि हारने वाले को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाना होगा। यदि अज्ञातवास में उनका पता चल गया तो फिर से ये पूरा चक्र आरंभ होगा। और वही हुआ कि इस बार भी जुए में पांडवों की ही हार हुई। उसके बाद राजा युधिष्ठिर को मृगछाला पहनकर भाइयों सहित द्रौपदी के साथ वनवास पर जाना पड़ा। पांडवों को वन में 12 वर्ष बिताना पड़ा। वनवास के समय महर्षि धम्म इन लोगों के साथ ही थे। उस समय कई ऋषि मुनि और साधु महात्मा पांडवों से मिलने वन में आते थे। उन सब के उपदेश से युधिष्ठिर और भाइयों ने अनेक तीर्थों की यात्राएं की। वनवास काल में सगे संबंधी और अन्य प्रियजन भी पांडवों से मिलने के लिए प्रायः आया करते थे। वन में विभिन्न प्रकार के क्लेशों से परेशान होकर कई बार द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कौरवों से बदला लेने के लिए उकसाया, पर धर्मराज युधिष्ठिर हर बार अलग अलग तरह से उपदेश देकर द्रौपदी को समझा दिया करते और प्रतीक्षा करने को कहते। वनवास के समय की बात है, एक बार दुर्योधन अपने ऐश्वर्य दिखलाकर पांडवों को मानसिक कष्ट पहुंचाने के लिए द्वैत वन में जाता है। ऐसे में अर्जुन के मित्र गंधर्वराज चित्रसेन कौरवों की बुरी मनशा जानकर उन सबको जीतकर स्त्रियों सहित बंदी बना लेते हैं। तब कौरवों के महामंत्री युद्ध से भागकर युधिष्ठिर की शरण में जाते हैं। महामंत्री युधिष्ठिर से दुर्योधन और कुरुकुल की स्त्रियों को छुड़ाने के लिए विनती करते हैं। तब भीम मुस्कुरा कर कहते हैं,
अच्छा हुआ हमारा काम दूसरों ने कर डाला।
परंतु युधिष्ठिर को भीम की बातें अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं, ऐसा न कहो भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं। आश्रितों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। अपनों में चाहे कितना भी कलह हो, पर जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर कष्ट दे या अपमान करे, तब उसका हम सबको मिलकर प्रतिकार करना चाहिए। आपस में विवाद होने पर वे 100 भाई और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए हमें मिलकर 105 हो जाना चाहिए। तो हे पुरुष सिंहों, उठो जाओ, शरणागत की रक्षा कर कुरुकुल कामिनियों सहित दुर्योधन को छुड़ा कर लाओ। ऐसी अजात शत्रुता, धर्मप्रियता और नीतिज्ञता के स्वरूप थे पांडु पुत्र युधिष्ठिर। ऐसे महान चरित्र से हमें सीखने की आवश्यकता है कि सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदि आदि का कोई मूल्य नहीं है। वनवास काल में प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब ये एक बार यक्ष रूप धर्म ने उनसे कहा कि
तुम्हारे इन मृत भाइयों में से कहो, किस एक को जीवित कर दूं?
युधिष्ठिर ने तुरंत कहा कि आप मेरे प्रिय भ्राता नकुल को जीवन दान दें। तब यक्ष ने युधिष्ठिर को याद दिलाया,
तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान है, तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो?
ऐसे में युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर यक्ष प्रसन्न हुए बिना न रह पाए। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी 2 माताएं थी, माता कुंती और माता माद्री। माता कुंती का तो मैं 1 पुत्र जीवित हूं, माता माद्री का भी 1 पुत्र जीवित रहना चाहिए। मुझे राज्य की लालसा नहीं है। युधिष्ठिर की समबुद्धि देखकर तब यक्ष रूप धर्म ने अपना असली रूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया था। ऐसे ही महाभारत युद्ध के समय जब गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए असत्य बोलने की आवश्यकता पड़ी, तब भी धर्मराज युधिष्ठिर शेष तक पूरा सत्य नहीं रख सके। सत्य शब्द कुंजर का उच्चारण उनसे हो ही गया। युद्ध में कर्ण के मारे जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा था कि
आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने चेष्ट भ्राता का हत्यारा बना दिया है। मैं आज सारी नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कभी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी।
महाभारत के पात्रों में धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु नहीं हुई थी, केवल वे ही सदेह स्वर्ग गए थे। स्वर्गारोहण के समय हिमालय के मार्ग में जब द्रौपदी और चारों भाई एक एक करके गिर गए, तब देवराज इंद्र स्वयं रथ लेकर आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा,
महाराज रथ पर सवार होकर सदेह स्वर्ग पधारिए।
तब युधिष्ठिर उनसे कहते हैं,
ये कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, कृपया इसे भी साथ ले चलने की आज्ञा दें।
देवराज इंद्र कहते हैं,
धर्मराज ये मोह कैसा, आप सिद्धि और अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अब इस कुत्ते को छोड़िए।
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था,
देवराज ऐसा करना आर्यों का धर्म नहीं है। जिस ऐश्वर्य के लिए अपने भक्त का त्याग करना पड़ता हो वो मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे न मिले, इस कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता।
इतने में ही वो कुत्ता दृश्य हो जाता है। तब साक्षात धर्म प्रकट होकर कहते हैं,
पांडुपुत्र युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य निष्ठा को देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम धर्म के मार्ग में हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।
इसके बाद युधिष्ठिर साक्षात धर्म और देवराज इंद्र के साथ रथ में बैठकर सदैव स्वर्ग पधारे थे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।